ये BBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में खुसूसी प्रोग्राम नीम रोज। ये प्रोग्राम आप हर रोज इसी वक्त शॉर्ट वेव पर 19 मीटर बैंड पर 15,310 किलोहर्ट्ज़ और 22 मीटर बैंड पर 13,650 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकेंगे। ये प्रोग्राम रेडियो के अलावा हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी नशर किया जाता है।
पीर 16 सितंबर जम्मू कश्मीर की खबरों के खुसूसी प्रोग्राम नीम रोज के साथ मैं हूं नाजिया गुलजार। LOC पर झड़पें, इंडिया का पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्जाम, नामा निगार बोले।
बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है 2000 से ज्यादा ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें पाकिस्तानी अफवाज ने जो जंगबंदी मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी की है।
तफसील आलमी खबरों के बाद
सनीचर को सऊदी अरब की दो तेल की तनसीबात पर हमलों के बाद तेल की कीमतें गुज़श्ता 4 महीनों की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं। इन हमलों के बाद आलमी सतह पर तेल की फराहमी 5% तक कम हो गई है। आलमी मंडी में ट्रेडिंग के आगाज पर ही खाम तेल के बैरल की कीमत में 19% इजाफा हुआ और वो 71.95 डॉलर फी बैरल तक जा पहुंची थी। बाद अज़ां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी ज़खायर रिलीज करने पर कीमत में कुछ कमी आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर होने वाले ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अमरीका जानता है कि इन हमलों का जिम्मेदार कौन है, लेकिन वो इस हवाले से सऊदी अरब की तस्दीक का मुंतजर है। उधर ईरान ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले इन इल्जाम की तरदीद की है। बरतानिया के वजीर अजम बोरिस जॉनसन आज यूरोपीय कमीशन के सदर जान क्लॉड जेंकर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। बरतानवी वजीर अजम ने वाजे किया है कि वह ब्रेग्जिट में ताखीर से मुतालिक किसी भी पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। शाम में हस्पताल के करीब कार बम धमाके में 2 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक हो गए हैं। धमाका शिमाल मगरबी कस्बे अलराय में हुआ जहां तुर्की के हिमायत याफ्ता शामी बागियों का कंट्रोल है। एनी शाहिद के मुताबिक रिमोट कंट्रोल बम हेल्थ केयर सेंटर के बाहर खड़े ट्रक में नस्ब था। तुर्की की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने इस बम धमाके को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया है। बरतानवी हुकूमत के साबिक साइंसी मुशीर प्रोफेसर डेविड किंग ने कहा है कि जितनी तेजी से मौसमियाती तब्दीली रूनुमा हो रही है वो इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने ग्लेशियर के तेजी से पिघलने पर हैरानगी का इजहार करते हुए मुतनब्बे किया है कि हालिया शदीद मौसमी असरात साइंसी पेशगोइयों से बालातर हैं।
कश्मीर की सूरत हाल पर खसूसी प्रोग्राम नीम रोज BBC उर्दू सर्विस से नश्र किया जा रहा है। इंडियन हुकूमत की जानिब से इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से कश्मीर भर में पाबंदियों को 43 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वहां मामूलाते ज़िंदगी बहाल नहीं हो सके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें भी होती रही हैं। इंडिया पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगा रहा है। आज की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए दिल्ली से BBC के नामा निगार शकील अख्तर ने राबिता किया श्रीनगर में हमारे साथी रियाज मसरूर से।
ये देखें, जैसा कि मालूम ही है कि पिछले 40 रोज से ज्यादा अरसा गुजर चुका है लाइन ऑफ कंट्रोल के रजौरी पूंछ और यहाँ कश्मीर में कुपवाड़ा और उड़ी में भी तनाव रहा और अब वहाँ हालांकि कल रात से कोई वायलेशन नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे खौफ हरास का माहौल है और भारत के दफ्तर खारजा से एक बयान जारी हुआ है जिसमें आदादोशुमार जारी किए गए हैं और कहा गया है कि 2000 से ज्यादा ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें पाकिस्तानी अफवाज ने जो जंगबंदी मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी की है और उसमें 20 से ज्यादा जानें तल्फ हुई हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जनरली या तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये आदादोशुमार जारी किए जाते हैं या वजारत दाखिला की तरफ से, लेकिन दफ्तर खारजा की तरफ से इस तरह के बयानात आना और लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान पर खिलाफ वर्जियों के इल्जाम, ऐसा लगता है कि अक़वामे मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है और जिसमें कुछ ही अयाम में वजीर अजम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी वजीर अजम भी खिताब करने वाले हैं, ऐसा लगता है कि एक बिल्डअप किया जा रहा है, डिप्लोमेटिक बिल्डअप, जिसमें ये कहा जाए कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदरूनी हदूद में जो है मुदाखलत कर रहा है और ये भी कहा गया है कि दरअंदाजी की जा रही है इस शेलिंग की आड़ में और मुसल्ला मिलिटेंट्स जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पर कई मकामात पर जमा हो गए हैं جو بھارتی حدود میں داخل ہو رہے ہیں, اور وزیر دفاع نے ٹھوس بنیادوں پر باقاعدہ سیدھے سیدھے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی بھارتی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا چاہے جموں یا کشمیر کے علاقوں سے تو اسے بخشا نہیں جائے گا.
ریاض, پابندیوں میں نرمی کے اگلے قدم کے حوالے سے اس طرح کی خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں کہ شاید کشمیر ایڈمنسٹریشن ہے وہ بی ایس این ایل جو موبائل کا جو بی ایس این ایل کمپنی ہے اس کے پوسٹ پیڈ موبائل شاید اس کو چلانے کی اجازت دے یا اس کو کچھ اس میں نرمی کرے.
جی دیکھیں, جو حکومت کے ترجمان روہت کنسل ہیں انہوں نے بھی گزشتہ ہفتے ایک پریس کانفرنس میں جب کافی زیادہ اصرار کیا صحافیوں نے تو انہوں نے کہا کہ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ عنقریب ان قدغنوں کو نرم کیا جائے گا جو ٹیلی فون رابطوں پر لگی ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے کسی طرح کا کوئی وقت یا کوئی مدت جو ہے اس وہ نہیں بتایا کہ کب تک یہ ہوگا. یہاں پہ کم سے کم 60 لاکھ لوگوں کے پاس موبائل فون ہیں, اور 60 لاکھ میں سے کوئی 12 یا 13 لاکھ بی ایس این ایل موبائل سمز ہیں جن میں زیادہ تر پولیس اہلکاروں کے پاس ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک شروعات ہوگی قدغنوں کو ختم کرنے کے حوالے سے اگر واقعی ایسا ہوتا ہے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان گزشتہ روز کوٹلی اور بھمبر میں لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹرز میں لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پہنچے. مظفر آباد سے ایم اے جرال کی رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان نے اتوار کے روز لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے متاثر ہونے والے افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جنوبی ضلع کوٹلی میں لائن آف کنٹرول کے جنڈالا جبکہ ضلع بھمبر کے سمانی سیکٹر پہنچے, جہاں انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی اور پھر دو الگ الگ عوامی اجتماع سے خطاب بھی کیا. اس موقع پر راجہ فاروق حیدر خان نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی انتہا پسند قوتیں اور نریندر مودی نہ صرف جموں کشمیر بلکہ پاکستان, نیپال, سری لنکا, مالدیپ اور بھوٹان کو بھی بھارت کا حصہ سمجھتے ہیں, جس بنا پر مودی سرکار نے اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کرنے کی غرض سے پہلا حملہ کشمیر کی خصوصی حیثیت پر کیا اور اسے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر سے لاک ڈاؤن اور وہاں جاری ظلم بند نہ کیے تو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کی مدد کی خاطر وہ خود عام لوگوں کے ہمراہ جموں کشمیر کو تقسیم کرنے والی منوس سیز فائر لائن کو رون ڈالیں گے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیراعظم کے پریس سیکرٹری راجہ وسیم کے مطابق راجہ فاروق حیدر خان آج پیر کے روز بھی دیگر اضلاع میں لائن آف کنٹرول پر رہنے والے افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے اور ان کے مسائل سننے کے لیے دورہ کریں گے. ایم اے جرال, بی بی سی, ظفرآباد.
جموں کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پروگرام نیم روز آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
دنیا میں کہیں سے بھی جموں کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں. ہم اسے بی بی سی کے ریڈیو پروگرامز نیم روز اور سیربین میں شامل کریں گے. یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کریں 0800-222-75. پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے قبل 0092 کا اضافہ کیجیے. پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعارف ضرور شامل کریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں قریب 80 لاکھ افراد محصور ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈین حکومت کشمیریوں کے بنیادی حقوق دبانے اور اس معاملے سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے.
8 million Muslims in Kashmir are under siege for almost now 6 weeks.
مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ کے قریب مسلمان گزشتہ تقریباً 6 ہفتوں سے محاصرے میں ہیں. انڈین اقدامات سے خطہ توجہ کا مرکز بن گیا ہے کیونکہ انڈیا اپنے زیر انتظام کشمیر کو زبردستی اپنا حصہ بنانے اور کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پلوامہ حملے جیسی کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے, کیونکہ وہ کشمیر میں جو بھی کر رہے ہیں اس کا رد عمل آئے گا. پاکستان جنگ نہیں چاہتا اور مجھے یقین ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جب دو ایٹمی قوتیں ٹکرائیں گی تو ہم اس کے نتائج کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اس لیے ہم نے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا. ہم اس مسئلے کو دنیا کے تمام اہم فورمز پر اٹھا رہے ہیں. عالمی برادری کو اس پر توجہ دینی ہوگی کیونکہ اگر یہ معاملہ جنگ تک جاتا ہے تو یہ صرف برصغیر پاک و ہند تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. انڈین حکومت نے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کو توڑا ہے بلکہ اپنے آئین کی بھی خلاف ورزی کی ہے.
We have made repeated attempts to start a dialogue with India.
हमने जब से हुकूमत संभाली है इंडिया से बातचीत करने की कोशिश की, तमाम मामलात पर उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन इंडिया ने इसे हमारी कमजोरी समझ लिया, इसलिए हमने उन्हें बातचीत की दावत दी, लेकिन इंडिया ने हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फहरिस्त में डालने की कोशिश की। अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में जाता तो हम पर बहुत सी पाबंदियां लग जाती हैं, और इंडिया चाहता है कि हम माशी तौर पर दिवालिया हो जाएं।
और अब कुछ बात सोशल मीडिया की। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने इंडिया के जेरे इंतजाम कश्मीर की सूरत हाल के बारे में ट्विटर पर सनीचर को एक से ज़ायद ट्वीट्स की, जिस पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। इस पर मैंने हमारे साथी ताहिर इमरान से पूछा।
इंडिया की जानिब से आर्टिकल 370 जो है उसको ख़त्म करने के मामले के बाद बहुत बार ये ट्विटर पर देखने को मिला कि मलाला इस पे बात क्यों नहीं करी, मलाला ने इस पे कोई ट्वीट नहीं किया या कोई मैसेज नहीं दिया। बिलाखिर जब मलाला बोली तो उस पर एक अच्छा खासा हंगामा खड़ा हुआ ट्विटर के ऊपर। मलाला ने अपनी ट्वीट में लिखा कि उनको बहुत तशवीश है उन 4,000 अफराद के मुतल्लिक जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया है। अब उनकी ये ट्वीट अपनी जगह पर मौजूद थी, जिसके ऊपर इंडियन सहाफ़ी बरखा दत्त ने उनको ट्वीट की कि मुझे बड़ी मायूसी हुई है पाकिस्तान का जो रवायती बयानिया है मलाला की जानिब से उसको आगे बढ़ाने के अमल के ऊपर। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि मलाला खुद अपने मुल्क में वापस नहीं जा सकती, जहाँ पर उन्हें बच्चियों के स्कूल जाने के लिए आवाज़ उठाने पर गोली मार दी गई थी। अब ये सारी बात हो रही है, इस पे पाकिस्तानी सहाफ़ी महमल सरफराज ने फिर बरखा दत्त को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि ये कैसे पाकिस्तान का बयानिया हो सकता है, तो क्या जो दुनिया भर के इंसानी हकूक के इदारे हैं, मीडिया की तंजीमें हैं और इंडिया के अपने अखबारात हैं, वो किस सारे गलत हैं फिर। अब इसके ऊपर उनके दरमियान नोकझोंक जारी रही और बिलाखिर बरखा दत्त ने कहा कि वो कभी भी इजहार राय की आज़ादी का हक जो है मलाला का, उसको उससे इनकार नहीं कर सकती।
इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में बेशतर इलाकों में टेलीफोन लाइंस और इंटरनेट की सहूलत बंद है, जिसकी वजह से दूसरे इलाकों में रहने वाले कश्मीरी अपने अजीज़ों से राबिता नहीं कर पा रहे। उन्होंने बीबीसी उर्दू के फेसबुक सफ़े पर अपने पैगाम भेजे हैं, आइए सुनते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा मैसेज रईस और ज़ियारत भाई के लिए है। एक महीना हो गया उनका कुछ पता नहीं, बस अल्लाह से दुआ है कि आप लोग सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह हालात जल्द ही बेहतर हो जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शमशाद अली खान कसौली हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ। मैं कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के कुकरना का रहने वाला हूँ। मेरा मैसेज मेरे घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम है, जिनकी मुझे बेहद फिक्र हो रही है और उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम, मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ, मेरा नाम है मुबीन। मेरा ये पैगाम है कि कश्मीर के रहने वाले नवाब बाग से मीर मुश्ताक को है। मैं यहाँ पे, मेरी हालात भी ठीक नहीं है, दादी की पहले से तबीयत ठीक नहीं थी और अभी कैसे हैं पता नहीं। मैं दुआ करती हूँ सब ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। जब भी आपको मौका मिलेगा आप बात करिएगा, आपके इंतज़ार में हूँ। आप पापा मम्मी का सबका ख्याल रखिएगा और अपना भी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन नहीं हो सके, बस आप ही का इंतज़ार में हूँ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सान खान है और मैं गल्फ में रहता हूँ। यह मैसेज मेरे फ्रेंड इकरा उसाइमदी के लिए है। आई होप इंशाल्लाह आप वहाँ सब खैरियत से होंगे। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ जल्दी ही कम्युनिकेशन रिस्टोर कर दी जाएगी और हालात सही हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।
और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की खबरों और अपडेट्स के बारे में प्रोग्राम नीम रोज़ अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आखिर में अहम खबरों का खुलासा।
सनीचर के रोज़ सऊदी अरब की दो तेल के तनसिबात पर हमलों के बाद तजारती हफ्ते के आगाज़ पर तेल की कीमतें गुज़श्ता 4 महीनों की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अमेरिका में हज़ारों कारकुनों ने जनरल मोटर्स के खिलाफ मूलगीर हड़ताल शुरू कर दी है। दुनिया भर से मुआशी सरगर्मियों के निगरान फेसबुक के नुमाइंदों से आज कंपनी के अपने क्रिप्टो करेंसी लाइब्रा को लॉन्च करने के मनसूबे के बारे में पूछताछ करेंगे। अमरीकी रॉक ग्रुप के सरबराह गुलकार रिक ओसिक न्यूयॉर्क में वाकई अपने घर से मुर्दा हालत में पाए गए हैं। उनकी उम्र 50 बरस थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर होने वाले ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है।